एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
उठा कर गोद में स्वर्ग का मार्ग वहां यीशु के पीछे सदा मैं चलूंगी। हाँ मैं उसके हाथों को मैं जीवन भर यूं ही चलूंगी। यीशु के पीछे सदा मैं चलूंगी। हाँ मैं उसके हाथों को मैं जीवन भर यूं ही चलूंगी।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोतागण, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें वचन सुनने से पहले। हे हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को तो आशीष दे, तेरे वचनों से आशीष दे। जब हम उसे सुनते हैं तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा चला और तेरा रास्ता में ले चल और तेरे स्वर्ग राज के लिए तैयार कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। आज हम सीखेंगे जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब क्या। जब कोई बच्चा पहले पूछता है मरने का क्या मतलब है तो हम टाल मटोल करते हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति के मरने के बारे में बात करने या यहाँ तक कि सोचने से भी घबराते हैं जिसे हम पसंद करते हैं। मौत हर जगह लोगों की आम दुश्मन है। मौत के बारे में कठिन प्रश्नों के जवाब क्या हैं? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्या हम अपने मृत प्रियजनों को फिर से देख सकेंगे? एक पेचीदा प्रश्न। हम सभी को कुछ क्षणों में शायद किसी मित्र या प्रियजन के गुजरने के बाद हमारे पेट के गुदे में खालीपन जैसे महसूस होता है। वो अकेलापन हम पर छा जाता है क्योंकि हम जीवन के अंत की झलक देखते हैं। ये मामला जो इतना महत्वपूर्ण है, भावना से भरा हुआ किया गया है, जहां हम मरने पर क्या होता है इसके बारे में सच्चाई सीख सकते हैं। सौभाग्य से पृथ्वी पर मसीह के विशेष कार्य का हिस्सा उन लोगों को मुक्त करना था जिनकी सारी जिंदगी मृत्यु के डर के मारे दास्ता में फंसी हुई थी। इब्रानियों 2:15 और बाइबल में यीशु आरामदायक संदेश प्रस्तुत करता है और मृत्यु और भविष्य के जीवन के बारे में हमारे सभी प्रश्नों का स्पष्ट रूप से उत्तर देते हैं। परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया? बाइबल से मृत्यु के बारे में असली सच्चाई को समझने के लिए शुरुआत से शुरू करें और देखें कि हमारे निर्माता ने हमें कैसे बनाया। परमेश्वर ने मैदान की धूल से मनुष्य का निर्माण किया, जीवन की श्वास उसके नाक में फूंक दी और मनुष्य जीवित हो गया। उत्पत्ति 2:7। सृष्टि पर परमेश्वर ने आदम को धरती की धूल से बनाया। उसके सिर में एक मस्तिष्क सोचने के लिए तैयार था, रक्त उसकी नसों में बहने के लिए तैयार था। परमेश्वर ने उसके नाक में जीवन की सांस फूंकी और आदम जीवित प्राणी बन गया। इब्रानी एक जीवित आत्मा। ध्यान दे, बाइबल यह नहीं कहती है कि आदम को आत्मा मिली है, बल्कि यह कहती है कि मनुष्य जीवित आत्मा बन गया। जैसे ही परमेश्वर ने आदम में श्वास फूकी, जीवन परमेश्वर से बहने लगा। शरीर और जीवन की सांस के संयोजन ने आदम को जीवित प्राणी या एक जीवित आत्मा बनाया। तो हम इस तरह मानव समीकरण लिख सकते हैं, धरती की धूल जोड़ जीवन की सांस बराबर एक जीवित आत्मा, या निर्जीव शरीर जोड़ परमेश्वर से सांस बराबर एक जीवित प्राणी। हम में से प्रत्येक के पास शरीर और तर्कसंगत मस्तिष्क है। जब तक हम सांस लेते रहते हैं, हम एक जीवित प्राणी या एक जीवित आत्मा हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या होता है? मृत्यु पर उत्पत्ति 2:7 में वर्णित रचनात्मक प्रतिक्रिया के विपरीत होता है। सुभोपदेशक 12:7 कहती है, और धूल उस भूमि पर लौट जाती है जहां से वो आई थी, और आत्मा परमेश्वर के पास लौटता है जिन्होंने इसे दिया। बाइबल अक्सर सांस और आत्मा के लिए इब्रानी शब्दों का उपयोग अंत परिवर्तनीय रूप से करती है। जब लोग मर जाते हैं तो उनका शरीर धूल बन जाता है और आत्मा जीवन की सांस परमेश्वर के स्रोत पर लौट जाती है। लेकिन आत्मा के साथ क्या होता है? जैसा कि मैं निश्चित रूप से रहता हूँ, परम प्रभु घोषणा करते हैं, हर जीवित आत्मा मुझसे संबंधित है। जो आत्मा पाप करती है वही मारा जाएगा। एजिकेल 18:3-4। आत्मा मर जाती है, अब यह अमर नहीं है, यह नष्ट हो सकती है। उत्पत्ति 2:7 से प्राप्त समीकरण जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो मृत्यु पर इसे स्वयं उलट देता है। पृथ्वी की धूल से जीवन की सांस घटाने से एक मृत आत्मा हो जाता है, या निर्जीव शरीर में परमेश्वर से श्वास घटा दिया जाए तो एक मृत प्राणी हो जाता है। मृत्यु जीवन की समाप्ति है। शरीर धूल में विघटित हो जाता है और सांस या आत्मा परमेश्वर के पास वापस चली जाती है। हम जीवन में एक जीवित आत्मा हैं, लेकिन मृत्यु में केवल एक शव, एक मृत आत्मा। इसलिए मृत लोग सचेत नहीं हैं। जब परमेश्वर हमें दी गई जीवन की सांस वापस लेते हैं, हमारी आत्मा मर जाती है। लेकिन जैसा कि हम बाद में इस अध्ययन में देखेंगे, मसीह के साथ आशा है। मृत व्यक्ति क्या कुछ जानता है? आइए हम सुभोपदेशक 9:6 से पढ़ते हैं। मृत्यु के बाद मस्तिष्क विघटित हो जाता है, यह कुछ भी नहीं जानता है, या ये कुछ भी याद नहीं कर सकता है। सभी मानवीय भावनाएं मौत पर खत्म हो जाती है। उनके प्रेम, उनकी नफरत और उनकी ईर्ष्या लंबे समय के लिए विलुप्त हो जाते हैं। सुभोपदेशक 9:6। मृत लोग सचेत नहीं है, इसलिए वे किसी भी चीज से अवगत नहीं है। उनका जीवितों के साथ बिल्कुल संपर्क नहीं है। जीवित रहने वालों को पता है कि वे मर जाएंगे, लेकिन मृत कुछ भी नहीं जानते। सुभोपदेशक 9:5। मौत एक स्वप्न रहित नींद की तरह है। वास्तव में बाइबल मौत को 54 बार नींद कहती है। यीशु ने सिखाया कि मृत्यु नींद की तरह है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हमारा दोस्त लाजरस सो रहा है, लेकिन मैं उसे उठाने के लिए वहां जा रहा हूँ। उसके शिष्यों ने उत्तर दिया, परमेश्वर यदि वह सोता है तो वह ठीक हो जाएगा। यीशु उसकी मृत्यु के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसके शिष्यों ने सोचा कि उनका मतलब प्राकृतिक नींद से है। तो फिर उन्होंने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया, लाजरस मर चुका है, यूहन्ना 11:11-14। यीशु के आने से 4 दिन पहले लाजरस मर गया था, लेकिन जब यीशु उसकी समाधि में गए तो उन्होंने साबित किया कि परमेश्वर के लिए मरे हुए लोगों को उठाना उतना ही आसान है जैसे हमारे साथी को सोते हुए उठाना है। यह जानकर बहुत खुशी है कि हमारे मृत प्रियजन सोते हैं, यीशु में शांतिपूर्वक विश्राम करते हैं। मौत की सुरंग जिसे हम किसी भी दिन पार कर सकते हैं, शांत शांतिपूर्ण नींद की तरह है। क्या परमेश्वर उन लोगों को भूल जाता है जो मृत्यु में सोते हैं? मौत की नींद कहानी का अंत नहीं है। कब्र पर यीशु ने लाजरस की बहन मार्था से कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, वह जो विश्वास करता है वह जीवित रहेगा भले ही वह मर जाए, यूहन्ना 11:25। जो लोग मसीह में मर जाते हैं वे कब्र में सोते हैं, लेकिन उनके पास अभी भी एक उज्जवल भविष्य होता है। वह जो हमारे सिर पर हर बाल की गणना करता है और हमें अपने हाथ की हथेली में रखता है, वह हमें नहीं भूल पाएगा। हम मर सकते हैं और धूल में लौट सकते हैं, लेकिन हमारे व्यक्तित्व का रिकॉर्ड परमेश्वर के दिमाग में स्पष्ट है। और जब यीशु आएंगे तो वह लाजरस की तरह ही सदाचारी लोगों को उनकी नींद से जगाएंगे। हमें बाइबल बतलाती है, हम नहीं चाहते हैं कि आप उन लोगों के बारे में अनजान रहे जो सो चुके हैं, या उन बाकी लोगों की तरह शोक करें जिनके पास कोई आशा नहीं है, क्योंकि प्रभु स्वयं स्वर्ग से नीचे आ जाएंगे। उस समय ललकार जोरदार आदेश के साथ प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मारे गए हैं वे पहले जी उठेंगे। उसके बाद हम जो भी जीवित हैं और बचे रहेंगे वे एक साथ बादलों में हवा में परमेश्वर से मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे, और इसलिए हम हमेशा प्रभु के साथ होंगे। इन शब्दों के साथ अन्य सभी को प्रोत्साहित करें। 1 थिस्सलुनीकियों 4:13-16-18 में हम यह पाते हैं। पुनरुत्थान के दिन मृत्यु की सुरंग एक संक्षिप्त विश्राम की तरह लगती है। मृतकों को समय बीतने के बारे में पता नहीं है। जिन्होंने मसीह को अपने उद्धारक के रूप में स्वीकार कर लिया है, उन्हें पृथ्वी पर आने वाली उनकी अद्भुत आवाज से नींद से जागृत किया जाएगा। पुनरुत्थान की आशा में एक साथी है, एक स्वर्गीय घर की आशा, जहां परमेश्वर उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देंगे। अब और मृत्यु या शोक या रोना या दर्द नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 21:4। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन्हें मृत्यु से डरना नहीं पड़ता है। इसके अलावा परमेश्वर के साथ एक पूर्ण जीवन का अनंत काल है। यीशु मृत्यु की कुंजियां रखते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:18। मसीह के बिना मृत्यु एक मार्गी सड़क होगी जो विस्मरण में समाप्त हो रही है, लेकिन मसीह के साथ एक उज्जवल चमकदार आशा है। क्या अब हम अमर हैं? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उन्हें मृत्यु के अधीन नाशवान बनाया गया था। वर्तमान समय में परमेश्वर अकेले ही अमरत्व रखते हैं, जैसा कि हम पाते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं 1 तिमोथियों 6:15-16 में, परमेश्वर अकेले अमर हैं। धर्म ग्रंथ यह स्पष्ट करता है कि जीवन में लोग नाशवान हैं, मृत्यु के अधीन, लेकिन जब यीशु लौटेंगे तो हमारी प्रकृति मौलिक परिवर्तन से गुजरेगी। देखो मैं तुमसे वेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएंगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। नाशवान देह अविनाश को पहन लेगा और मरणहार देह अमरता को पहन लेगी। 1 कुरिन्थियों 15:51-53। मृत्यु का नाश किया है। यीशु ने सुसमाचार के माध्यम से जीवन और अमरता को प्रकाशमान किया है। यह प्रतिज्ञा हम दूसरा तिमोथियस का 1:10 में पाते हैं। हम किसी प्रियजन की मृत्यु का सामना किस तरह कर सकते हैं? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो डर हम प्राकृतिक तौर पर महसूस करते हैं वो और भी गहरा हो जाता है जब हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है। अकेलेपन और नुकसान की भावना भारी हो सकती है। परमेश्वर कुछ अद्भुत पुनर्मिलन की योजना बना रहे हैं। बच्चे अपने उत्साही माता पिता के पास वापस आ जाएंगे। पति और पत्नियां एक दूसरों की बाहों में समा जाएंगे। जीवन का क्रूर अलगाव खत्म हो जाएगा। मरणहार अमरता को धारण कर लेगा, जो प्रतिज्ञा हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 15:54 में। बिना डरे मृत्यु का सामना आप कर सकते हैं जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसको अपना जीवनदाता मानते हैं। मौत हमारी लगभग हर चीज लूटती है, लेकिन एक चीज जो हमसे नहीं ले सकती है वह मसीह है, और मसीह सब कुछ एक साथ फिर से रख सकते हैं। इस दुनिया में मृत्यु हमेशा शासन नहीं करेगी। शैतान, दुष्कर्मी, मृत्यु और कब्र अग्नि की झील में नष्ट हो जाएंगे, जो दूसरी मौत होगी। प्रकाशित वाक्य 20:14। बिना डरे हुए मौत का सामना करने के लिए यहाँ 4 सरल सुझाव दिए गए हैं। पहला, मसीह में आशावादी विश्वास का जीवन जिए और आप किसी भी समय मौत के लिए तैयार रहेंगे। दूसरा, पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से मसीह की आज्ञाओं का पालन करें और आप दूसरे जीवन के लिए तैयार रहेंगे जिसमें आप कभी नहीं मरेंगे। तीसरा, मौत को एक छोटी सी नींद के रूप में सोचें, जिससे यीशु की आवाज आपको उनके दूसरे आगमन पर जागृत करेगी। चौथा, आश्वासन को ग्रहण करें जो यीशु ने हमें अनंत काल तक उनके साथ एक आकाशीय घर में रहने का दिया है। बाइबल की सच्चाई एक व्यक्ति को मृत्यु के डर से मुक्त करती है, क्योंकि यह यीशु को प्रकट करती है जिसे मृत्यु भी जीत नहीं सकी। जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं तो वह हमारे दिल को शांति से भर देते हैं। शांति मैं तुम्हारे साथ छोड़ता हूँ, यीशु मसीह कहते हैं 14:27 में। वह कहते हैं आगे, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, अपने दिल को परेशान ना होने दे और ना ही डरें। यीशु हमारे लिए किसी प्रियजन को खोने की त्रासदी का सामना करना भी संभव बनाते हैं। यीशु मृत्यु की छाया की घाटी के माध्यम से चले। वह अंधेरी रातों के बारे में जानता है जिनसे होकर हमें गुजरना होता है। आइए हम देखते हैं 2:14-15। क्योंकि बच्चों में मांस और लहू होता है, इसलिए आप भी उनके समान उनके सहभागी हो गए, ताकि अपनी मृत्यु के द्वारा वह उसको नष्ट कर सके जो मृत्यु की शक्ति रखता है, यानी शैतान, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे हुए थे। डॉक्टर जेम्स सिम्पसन, महान चिकित्सक जिन्होंने संज्ञाहरण विकसित किया, उनके बड़े बच्चे की मृत्यु हो जाने पर उनको एक भयंकर क्षति का अनुभव हुआ। वह किसी भी माता पिता के रूप में बहुत ही दुखी थे, लेकिन फिर उन्हें आशा पाने के लिए मार्ग मिला। अपने प्रिय बच्चे की समाधि पर उन्होंने एक मार्कर बनाया और उस पर उन्होंने यीशु के पुनरुत्थान के विषय में इन शब्दों को गोद किया, फिर भी मैं जीवित रहता हूँ। यह सब कुछ कहता है। व्यक्तिगत त्रासदी कभी कभी आसमान को भी मिटा देती है, फिर भी यीशु जीवित रहते हैं। हमारे दिल टूट सकते हैं, फिर भी यीशु जीवित रहते हैं। मसीह में हमें मृत्यु के बाद जीवन की आशा है। वह पुनरुत्थान और जीवन है, जैसा कि हम 11:25 में प्रतिज्ञा पाते हैं, और वह वादा करते हैं, क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे, 14:19। मृत्यु के बाद मसीह जीवन की हमारी एकमात्र आशा है, और जब मसीह फिर से आएंगे तो वह हमें अमरता देंगे। हम कभी भी मौत की छाया के नीचे नहीं जिएंगे, क्योंकि हमारे पास अनंत जीवन है। क्या आपने इस महान आशा की खोज की है कि हम अपने सबसे अंधेरे क्षणों में भी आनंद ले सकते हैं? यदि आपने कभी यीशु को अपने परमेश्वर और उद्धारक के रूप में स्वीकार नहीं किया है तो क्या आप अभी यह करेंगे? यदि आप यीशु को अपनाते हैं, आपको मृत्यु से डर नहीं लगेगी और मृत्यु के बाद भी अनंत जीवन का आश्वासन है। यीशु मसीह में आइए, मैं आपको निमंत्रण करता हूँ कि हम उसमें जिए। परमेश्वर पिता यीशु मसीह में आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे दयालु महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमें बनाया और तू हमें बचाना चाहता है, इस जीवन के परेशानियों से बचाना चाहता है, हमें पाप से और मृत्यु से बचाकर अनंत जीवन देना चाहता है। यीशु मसीह में हम यह पा सकते हैं पिता, हमें यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा यह अनंत जीवन दे। मेरे हरेक श्रोतागणों को तेरे वचनों को ग्रहण करने और तेरे द्वारा अनंत जीवन का वरदान को स्वीकार करने के लिए आत्मा से सुना ग्रहण कर। आमीन।
मुकदमा हो करे कर लो एक वकील, मुकदमा हो करे कर लो एक वकील, मुकदमा हो करे।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।